प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे आगे दो मन में संकल्प दो समय पर चाहिए तो बाबा क्या कहूंगा। एक जो आप कहते हैं स्वमान में रहे, बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप रहो। स्वमान में रहना या सदा स्मृति स्वरूप रहना, तो किन किन बातों की स्मृति रहे? दो बातें, एक वर्तमान कितने भाग्यवान है, दूसरा भविष्य मेरा कितना ऊंचा है। वर्तमान को देख, जैसे भाग्य का सितारा चमका हुआ हम अपना देख, बाप दादा के संग ज्ञान चंद्रमा माँ के संग, तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य गुप्त है, सूर्य गुप्त होता है, सितारे दिखाई माँ के साथ पढ़ते हैं। तो तुम साकार में माँ के साथ, बड़ी माँ के साथ थे, गुप्त बाप के साथ थे, सूर्य के साथ। इस बात को सोचते कितनी खुशी होती है, सितारा चमकने लगता है ना भाग्य का। दूसरा है सितारों का संगठन, जब माँ के साथ है तो चंद्रमा के साथ ऊपर सितारों का आपस में संगठन है, तो संगठन का यादगार क्या है? एक तो ऊपर, दूसरा जब गोवर्धन पर्वत को अंगुली दिए तो कैसे सीधी, यादगार है। सेवा में सदा सहयोगी, तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार देख, अपने यादगारों को देख, चित्रों को देख, स्मृति में रहो। कब स्मृति कब स्मृति, ये जैसे खेल है, ये खेल अच्छा नहीं है। स्मृति स्वरूप में रहना, तो हम अभी स्लो पढ़ेंगी, स्लो पढ़ू ना, तो ध्यान से आप अच्छी तरह से मुरली को सुनते अंदर समाते जाना। स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदीवपन को दिव्य सितारा समझते हो। हर एक अपने आप से चेक करते चाहे, जैसे बाबा जो हम कोई सबको बोल रहा है ना, तारीख समझे मेरे से बाबा बात कर रहा है। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा के नैनों के सितारे, और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बनाए रहे हो, उस श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपन को देखते हुए चलते हो। तकदीर बना रहे हैं ना, तो भविष्य सामने रख करके तकदीर बना रहे हैं ना। श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। जब अपन को दिव्य सितारा नहीं समझते हो, तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहती है। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदा स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है। गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहते हैं। दिन में सूर्य के सामने छिपे हुए रहते हैं, पर अंदर गुप्त है। प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहते हैं। ऐसे आप चेतन सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? चंद्रमा के साथ रहा ना। ज्ञान सूर्य तो गुप्त ही है ना, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी मां के साथ संबंध रहा ना। अंतर में बाप के साथ, सूर्य के साथ, प्रसिद्ध रूप में बड़ी मां के साथ। आप लोगों को सबको भाषण आती है ना? आती है? बोलो ट्रांसलेशन में सुनने वाले। तो अपन को सितारा समझते रहना है। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे सद्दाम बाप दादा के साथ ही संबंध रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना। पहले तुम अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना। सितारे आपस में संगठन में रहते, सदा एक दो के स्नेही और संयोगी रहेंगे। आप चेतन सितारों के यादगार ये सितारे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। चेतन और चित्र समान हुए हैं। अपने भिन्न भिन्न रूप के भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि यह मुझ चेतन का ही चित्र है। आसमान को देखते समझते ये हमारा चित्र है। हम ही ऐसे बाप दादा के संग है, साथ रहते हैं, संगठन में ऐसे स्नेह में रहते हैं। चेतन और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है। वह अजन समीप आ रहे हो। सितारे कब आपस में संगठन में रहते, एक दो से स्नेह और संयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कब सम्मेलन नहीं किया है? संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा हुआ है? जो अंतिम सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? हमको जो सम्मेलन करना है उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सबको सुनाते हो ना, तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सबको सुनाते हैं तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य है, उसकी डेट फिक्स की है? जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना, सारे साल की अभी डेट फिक्स हो रही है ना, सर्विस की प्लान की डेट फिक्स हो रही है। तो बाबा ये डेट पूछ रहा है हमारे, ये फिक्स की है? और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना तो ये फिक्स की है? वह सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है, आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है एक ऊपर वाला, दूसरा आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है, जो चित्र है उसको ही प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का स्नेह और संयोग, सभी का एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना, सभी का स्नेह संयोग और एक रस स्थिति, उसका भी चित्र है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर को अंगुली पर दिखाते हैं तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं। अगर तेरी बांकी होंगी तो हिलता रहेंगे सीधा और स्थित, सीधा और स्थित। उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है, ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बांका रास्ता हो जाता है, इधर उधर चले जाते हैं, अर्थात बुद्धि यहां वहां भटक जाती है, वह समाप्त हो। अभी इस साल में क्या करना है, जो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, सीधी एक रस स्थिति नहीं रहती है, अब क्या करना है? वह समाप्त हो, ऐसी ऊंचाई नीचाई की स्थिति समाप्त हो, एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। ये अपना उद्देश्य सम्मेलन का, एक रस स्थिति में। नोट करो हरे कपड़े पास मुझे इस तरह कहते ना, वहां जाते बदल जाते क्या होता है, तो यहां से ये पक्का कर लेगा तो बदलेंगे नहीं, वहां का वायुमंडल असर नहीं करेगा। लेकिन अपने ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो, ये भी क्वेश्चन पूछो अपने आप से। वा जैसे भक्तों को कहते हो कि चाय ना श्रेष्ठ है लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन आते हैं, चाय ना है श्रेष्ठ लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो कि ऐसे श्रेष्ठ बने, तो चाय ना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ कम। ये लाइन पूरी करती हूं। लेकिन चाहे ना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ कम, लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है, लक्ष्य दूर दिखाई पड़ता है तो उसको क्या कहा जाएगा। चाहना है लेकिन पुरुषार्थ में कमी है, क्या कहा जाएगा। महाज्ञानी अपन को सर्वशक्तिवान के संतान कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपन में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे समझते हो ना। तो आप भी, एक तो मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो सोचते हो वह अब नहीं कर सकते हो। कल जो असोचता वाला क्वेश्चन था ना, इसमें सोच जो सोचे सो न कर सके, उसका कारण क्या, शक्ति नहीं है। जो सोचते हो वह अभी नहीं कर सकते हो, अपनी वह अंतिम स्टेज, अपनी वह अंतिम स्टेज अब प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो कि अंत में है इसलिए समझते हो अंत में आएंगी। ये कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है वह स्टेज अंत में हो ही जाएंगी। लेकिन अभी से ही उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से ही, अटेंशन प्लीज, अगर अभी से ही उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे, अंतिम स्टेज को अभी से ही समीप नहीं लाते रहेंगे, तो वह स्टेज दूर रह जाएंगे, पा नहीं सकेंगे वो स्टेज। इसलिए पुरुषार्थ में जंप लगाओ। तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, कैसे जंप लगाएं? तो जंप कैसे लगाओ, चलते चलते क्या गलती हो जाती है जो जंप नहीं लगा सकते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है। केयरलेस हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, कुछ मतलब कमी पड़ जाती है। इसलिए आप पुरुषार्थ के स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पर होते भी परसेंटेज को भरो। बाबा मिसाल बड़ा अच्छा दे रहा है, पुरुषार्थ के स्टेज पर हो लेकिन परसेंटेज को भरो। परसेंटेज में बहुत कमी है। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा है, वह नंबर वार बनाए भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए वह भी कम है। इसलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वह कम दिखाई पड़ता है। जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तब तक प्रभाव फैल नहीं सकता। फैलाव के लिए परसेंटेज चाहिए। जैसे बल्ब होते हैं, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन जितनी लाइट की परसेंटेज होंगी इतनी जास्ती फैलेंगी। ये अपन को चेक करो, जितनी परसेंटेज ज्यादा होंगी बल्ब में उतनी लाइट फैलेंगी। तो बल्ब बने हो लेकिन लाइट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वह अभी नहीं है, उसको बढ़ाओ। सुनाया था ना, एक है लाइट, दूसरी है सर्च लाइट, तीसरा है लाइट हाउस। अपन को देखो मैं कौन हूं। एक है लाइट, दूसरा है सर्च लाइट, तीसरा है लाइट हाउस। भिन्न भिन्न स्टेजेस है ना। लाइट तो बने हो लेकिन लाइट हाउस हो चारों ओर, अंधकार को दूर कर लाइट फैलाओ, लाइट तो हो, लाइट तो बने, हल्के बने, बाबा के बने हैं, पर लाइट फैलाओ अंधकार को दूर करने की। सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ वे अपने आप को देख सके। तो अभी तो अपने आप को भी देख नहीं सकते, जैसे बहुत अंधकार होता है ना, तो न अपन को न दूसरे को देख सकते हैं। तो ऐसे लाइट हाउस बनो जो सभी अपने आप को तो देख सके, जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है। एक लाइट हाउस का मिसाल, फिर बाबा कहते हैं दर्पण। ऐसे दर्पण बने हो अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करने शुरू कर दे तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? ऐसी अगर रोशनी फैले तो चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? जब किसको साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जय का नारा जरूर निकलता है, अपने आप से अंदर से खुशी में नारा अपने आप निकलता है। ऐसे दर्पण तो बने हो ना, सारी दुनिया में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? पूछो, सारी दुनिया में कितनों को साक्षात्कार होता है? जो सामने आता है वह साक्षात्कार करता है? अगर दर्पण पावरफुल न हो तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है, होगा पतला दिखाई पड़ेगा मोटा। दर्पण ठीक नहीं होगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही रजनी बहन ठीक है ना, मिल रहा है ना काम? आप सौ लोगों के सामने आते ही वो देह को भूल जाए, अपने देह रूप में स्थित हो जाए, ठीक है? देह को भूल जाए, जो हमारे सामने आए देह को भूल जाए और देह रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप ये है। अच्छा, सदा सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मेलन करने वाले अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों को बाप दादा के नैनों के सितारों को तकदीर का सितारा जगाने वाले सितारों को याद प्यार और नमस्ते। अब यह बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्माएं अनुभव करते हो, ये स्मृति में रहते हुए समर्थ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होंगी उतनी समर्थी होंगी। स्मृति कम तो समर्थि भी कम, स्मृति समर्थि ले आती है, शक्ति ले आती है, स्मृति कम समर्थि भी कम। तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है। जैसे अपने साकार स्वरूप कभी नहीं भूलता, सदा स्मृति रहती है मैं फला रहा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। सदा ये बहुत अच्छा लगता है अपन को भाग्यवान समझना, भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आई और चलते फिरते स्मृति विस्मृति में आ गई, चलते फिरते वो स्मृति न रही विस्मृति लाने वाले अपन में कई कई स्मृति लाते हैं फिर भी भूल भी जाते हैं। दूसरे है स्मृति स्वरूप रहने वाले, एक है जो अपन में घर घर स्मृति अपन को दिलाते हैं तो भूल भी जाता है, दूसरे है स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप सब कौन हो, स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्मृति का खेल चलता है? हॉस्पिटल और अबू निवासी बाप दादा के सामने बैठे हैं। आप सभी तो बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि जैसे मेजॉरिटी मधुबन के, क्योंकि मेजॉरिटी मधुबन वासी हो, या समझते हो मधुबन हॉस्पिटल अलग है, मधुबन वासी हो ना, किस वातावरण में रहते हो? मधुबन के वातावरण में रहते हो या अलग हॉस्पिटल के वातावरण में रहते हो? क्यों सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। तो हॉस्पिटल या अपने अपने घरों में सुनते हो या मधुबन में सुनते हो, तो सबसे श्रेष्ठ पालना मुरली है। दूसरी पालना ब्रह्मा भोजन है, वो आत्मा की पालना, वो शरीर की पालना। तो दोनों मधुबन में होती है ना। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो? मधुबन में बैठे है ना, और हॉस्पिटल वाले तो खाते ही मधुबन में है ना, तो कितने लकी हो हॉस्पिटल वाले, कितने लकी हो। सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे ये कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे, एक तो ब्रह्मा भोजन, एक मुरली, दूसरा विशेष आत्माओं के द्वारा पालना मिलती रहे, ये भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, कैसे अपन को भाग्यवान बनाओ? स्मृति ये सदा रहे, प्रैक्टिकल ये है, ऐसा संग होवे, ऐसी पालना मिलती रहे, ऐसे बड़ों की नजरों में रहे। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिले, संग श्रेष्ठ मिलता रहे, कितने भाग्य है। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या की अध में ही, दिनचर्या के अध में ही पहला भाग्य है बाप से मिलन मनाना। भाग्यवान हूं, आंख खुली, बाबा से मिलन मनाया, भाग्यवान हूं। दुनिया तरफती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहां सोते हो? बिस्तरे पर, बापू साहब बिस्तरे पर सोते हो। तो देखो आद में भी भाग्य, मध्य में भी भाग्य और अंत में भी क्या होगा, सवेरे अमृत वेले भी भाग्य, दिन में भी भाग्य, कर सेवा करो, फिर बाबा सेवा के लिए बताता है, अंत में क्या होगा, भाग्य भाग्य। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो और बात तक बुद्धि में नहीं रखो, भाग्य की लिस्ट, मैं कितनी भाग्यवान हूं। और ये गीत सदा गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हद का भाग्य नहीं, बेहद का श्रेष्ठ भाग्य। तो जो स्वयं सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेंगे वो औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे। ये अच्छा काम मिला, बड़ी खुशी है हमको ये लाइन पढ़ते हा? जो सदा, ऐसी सी बातें दिल में छाप लेने वाली है, जो सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेंगे वो क्या करेंगे, औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। तो हॉस्पिटल वाले सारा दिन क्या करते हो, पेशेंट्स को देखते रहते हो सर, या अपने भाग्य को देखते रहते हो? हमारे डॉक्टर सब बैठे हैं ना, पेशेंट्स को देखते रहते हो, या अपने भाग्य को देखते रहते हो? क्या देखते हो? भाग्य को देखते हो ना, पेशेंट के साथ साथ अपने पहले अपने भाग्य को भी देखो। अभी बॉम्बे में थी ना डॉक्टर, किसने कहा ये मेरा भाग्य है? मैंने कहा आपको तकलीफ दिया? कहा नहीं नहीं मेरा भाग्य है। अच्छा है डॉक्टर कहे हमारा भाग्य है। साथ साथ पहले अपने भाग्य को देखो। तो भगवान और भाग्य दोनों याद रहे, भगवान और मेरा भाग्य। देखो टाइटल तो बहुत अच्छा मिला है अबू निवासी। तो अबू निवासी सुनने से परम धाम निवासी तो सहज याद आता है ना, क्योंकि अबू है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा याद आता है तो शिव बाबा सहज ही याद आएगा, कंबाइंड है ना। तो अबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है। अबू निवासी अपन को समझने से सुनने से भी स्वीट होम भी याद आता है, अर्थात बाप दादा दोनों सहज याद आ जाते हैं। हॉस्पिटल भी कहाँ है? अबू में है ना। खुशी होती है आजकल, भाई हमारे अबू में हॉस्पिटल है, खुशी होती है ना। ज्यादा सहज याद में हॉस्पिटल वाले रहते हो या जो अपने अपने स्थानों में अबू निवासी कहलाते हो वो रहते हैं, या जो सेंटर पर रहते हो वो रहते हैं? आया फिर हमारे ऊपर बाबा, कौन रहते हैं? याद में तो सभी रहते हो, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन है? किसको कहा होगा? याद में तो सभी रहते हैं, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन है? कौन है? डबल विदेशी, ताली तो बजाओ। बाबा ने हम लोगों को कहा सहज याद में रहने वाले, अबू निवासियों से ऊपर चढ़ा दिया, हॉस्पिटल वालों से भी चढ़ा दिया, हर एक को अपना अपना भाग्य है। सहज याद में रहने वाले, मौज में रहने वाले, बाबा बाबा करने वाले कौन? डबल विदेशी तो खुश रहते ही है। डबल विदेशी माना डबल खुश। हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? कभी कभी कम हो जाती है, कम नहीं होनी चाहिए खुशी, किसी की कम नहीं होनी चाहिए। क्या भी हो जाए, कैसा भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी न जाए। हर एक अपने आप को तैयार रखे, कुछ भी हो जाए, मरने की घड़ी भी आ जाए तो आत्मा चाहे तो खुशी से जाए ना, खुशी क्यों जाए? मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी न जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं है, क्यों? गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। शरीर भी छोड़ेंगे, खुशी से छोड़ेंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी बात हो रही है? तो डर तो ये ख्याल तो सारी चोरियों को भले जान जाएंगे, खुशी खुशी से जाएंगे तो औरों को भी खुश करने जाएंगे। तो इतना पक्का है शरीर जाए ले खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो सभी पक्के ब्राह्मण तो है ही, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। सब जब अपने साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में बी के लिखते हो ना, वो ब्रह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले, किसकी हिम्मत नहीं जो ब्रह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो, माया हो या माया का बाप हो, वो भी हमारा खुशी कम नहीं कर सकता। तो बाबा तो कुछ पूछा, जैसे आप पूछ रहे हो माया का बाप कौन, बाबा ने कहा रावण को माया का बाप कह दो तो खुशी कम हो नहीं सकती। तो आज का दिन याद रखना, जब खुशी कम हो जाए तो होंगी नहीं, आज के दिन के बाद होंगी नहीं। चाहे जहां भी रहो लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतनी फलक से कहते हो, पता नहीं कभी कभी संभव हो भी जावे। ये अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जानना असंभव है। जीवन में ब्राह्मण खुशी का चली जावे असंभव है। तो हर एक का चेहरा खुशनुमा, खुश नसीब दिखाई दे, हर एक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमकता हो, चमक रहा है ना। बादल तो नहीं आते हैं, बादल किसी भी चीज को छिपा देते हैं, तो बादल भी नहीं आ सकते, सदा चमकते रहो। शक्तियां क्या सोचती है, शक्तियां खुशी के गीत गाती रहती है और पांडव नाचते रहते हैं। ये गीत गावे वो नाचे, शक्तियां गीत गाती रहती है और पांडव नाचते रहते हैं। बाबा पता नहीं कहां से निकाल देता है, हम अधी लाइन पर ही, फिर पांडवों को क्या कहेगा, फिर से मैं समझा ही नहीं, पांडवों को कहेगा तुम नाचो, उसको कहेगा तुम गाओ। ब्राह्मण जीवन में है ही नाचना और गाना। कर्म भी करते हो, दूसरी बात सुनो, कर्म भी करते हो तो कर्म भी एक डांस है। डांस में हाथ पांव चलाना होता है ना, तो कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हो वह भी तो नाचना ही तो है। खेल कर रहे हो ना, अच्छा वरदान आज का सुन लो। महान आत्मा बनने के लिए डबल अंशक भव है, इस वरदान को स्मृति में रखने से महान आत्मा बनने के लिए डबल अंशक, इस वरदान को स्मृति में रखने से कभी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। आज भवन हिंसा को स्पष्ट किया है, हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति प्राप्त हो, यदि किसी शब्द द्वारा इसकी स्थिति को डगमग भी करते हो तो यह भी हिंसा है। इसकी स्थिति को डगमग करते हो किसी शब्द द्वारा, यह भी हिंसा है। यदि अपने असली ओरिजिनल ईश्वरी संस्कारों को दबाए, अपने असली ओरिजिनल ईश्वरी संस्कारों को दबाए, दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो यह भी हिंसा है। इसलिए डबल अहिंसक भव के वरदान को स्मृति में रख महान आत्मा बनो। स्लोगन, पवित्र जीवन और ईश्वरी मर्यादाएं ही सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है। ओम शांति। अब सब बोलो ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
वैसे तो आज थोड़े दिनों के लिए ही जाना हो रहा, क्योंकि बॉम्बे के कुछ सेवा के प्रोग्राम्स निश्चित है तो उस कारण से जा रही हैं। परंतु फिर भाग्य है कि शिवरात्रि के लिए और फिर साथ साथ यूके के बहुत बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं अगले सप्ताह में, उन्हों की सेवा संबंध से भी फिर वापस आना होगा 6 दिन के लिए, फिर विदाई लेकर के लंदन जाएंगे। परंतु अभी इस बार करीब 1 मास हुआ मधुबन में रहे और 2 प्रकार के अनुभव की बातें हैं। एक तो जो बाहर की रीति से भिन्न भिन्न सीजन्स चलते रहे उस समय, और दूसरा जो आंतरिक अनुभव की बातें रही। तो बाहर की रीति से तो जब मैं पहले पहुंची तो भारतवासियों की सीजन चल रही थी और उसमें तो दादियां और अनेक और सेवाधारी होती हैं, तो वो करीब 1 सप्ताह मुझे बिल्कुल हॉलिडे मनाने का चांस रहा। मैं समझती बहुत वर्षों के बाद कुछ हॉलिडे का चांस इस तरह से मिला, तो वो तो मैंने पूरा एंजॉय किया, परंतु उसका भी आंतरिक अनुभव पीछे मैं सुनाती हूँ। फिर उसके बाद जो 2nd सीजन चली वो थी मेहमानों की सेवा की, डायलॉग का कार्य, फिर रिट्रीट का कार्य। उसमें एक विशेष ये अनुभव रहा कि मुझे ये बहुत संकल्प आ रहा था कि अब ये जो विदेश के मेहमानों का ग्रुप है वो एक विशेष वरदान अनुभव कर रहे हैं, जो अगले वर्ष जो भी आएंगे और आगे कल्प के अंत तक आएंगे उनको वो भाग्य नहीं मिल सकेगा। ड्रामा की हर सीन आगे बढ़ती जाती है तो अनेक फायदे होते हैं, परंतु अनेक फिर और प्रकार की भी बातें होती। तो इन आत्माओं को मधुबन में, जो बाबा की चरित्र भूमि है, तपस्वी भूमि है, उस स्थान पर रहने का प्राप्ति हुई। बाकी जो अगले वर्ष आएंगे वो तो ज्ञान सरोवर की तो अपनी रौनक अपनी ब्यूटी होंगी, परंतु उन्होंने यहाँ पर जैसे कि बाबा का जो घर है ओरिजिनल घर, वहां पर रहने को वो चांस नहीं रहेगा। तो जैसे कि बाबा ने विश्व के कुछ गिनी चुनी आत्माओं को बुला करके इकट्ठा किया था, बिल्कुल सब आत्माएं ऐसे तैयार थी जो मधुबन में आकर के बहुत बहुत अपनी झोली भर करके गए। और उसमें ये मुझे लगता था कि बाबा अभी बहुत फास्ट काम कर रहा है, आत्माओं की बुद्धियों को तैयार करके बाबा लेके आ रही हैं। फिर तीसरा अनुभव जो बाहर की बातों में रहा वो फिर ये था कि मधुबन तो हर प्रकार का सागर है, परंतु कुछ दिनों तक तो मुझे लगता था मधुबन मीटिंग्स का भी सागर हो गया है। सवेरे से दोपहर, दोपहर से रात तक मीटिंग्स ही चलती रही। परंतु उसमें भी विशेष इस बार ये रहा कि सेवा 2nd बात आती, परंतु आपसी संबंध जो होता दिव्य रहे, अलौकिक रहे, स्नेह और रिस्पेक्ट रहे, वो बहुत अच्छा सुंदर अनुभव रहा। कैसे अपनी बड़ी दादियां और बड़े भाई बहुत प्रेम से हर बात सुनते थे, स्वीकार करते थे, और एक बहुत हल्की रीति से एक्सचेंज रहता था। उसमें एक सीन खास याद आती है जिसमें दादी जी से ये प्रश्न पूछा गया कि आप किस हिसाब से सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि अभी दादी क्या कहेंगे, 10 साल का प्लान बताएंगे या और कुछ आगे बताएंगे। तो दादी ने बिल्कुल दिल से कहा कि मैं तो 5 साल से जास्ती सोच नहीं सकती हूँ। जो 5 साल के अंदर जिसको जितना कुछ करना है, 5 साल भी ज्यादा ही कहेंगे, परंतु उस बीच में जिसको जितना जो कुछ करना है, चाहे अपने प्रति चाहे सेवा के प्रति, वो कर ही लेवे। तो मैं समझती वो भी एक विशेष जैसे कि इशारा मिला है भविष्य के लिए। फिर उसके बाद मीटिंग्स के बाद फिर ब्राह्मणों के साथ पर्सनल मुलाकात का चांस रहा, उससे भी एक तरफ तो सेवा कहेंगे परंतु दूसरी तरफ हर बात में स्वयं को भी फायदा होता। तो उसमें अनेक आत्माएं किस प्रकार से बाबा की बातों को सुनती हैं, समझती हैं, फिर किस ढंग से उनके बातें और आगे एक कदम बढ़ाई जा सकती है, 10 कदम आगे बढ़ाई जा सकती, वो भी फिर एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है हर प्रकार से। तो एक मास के अंदर कितनी भिन्न 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 सीन्स पास होती रही, वो मेरे सामने वो फिल्म गुजर रही है, परंतु उसमें फिर जो आंतरिक अनुभव की बातें रही, जैसे मैं बाबा की मुरली आज सुन रही थी और खास जबकि बाबा आबू निवासी और हॉस्पिटल वालों से बात कर रहे थे, तो उसमें मैं यही सोचती थी कि बाबा हमारे लिए अंडरलाइन कर रहे हैं कि मधुबन से क्या प्राप्ति होती, स्थूल भोजन, ब्रह्मा भोजन और सूक्ष्म बाबा की मुरली का भोजन और बड़ों की पालना, बाबा ने खास ये बातें मेंशन की। तो जब वो एक सप्ताह मुझे फ्री टाइम रहा, सेवा से फ्री टाइम, तो वो एक सप्ताह के अंदर एक मैंने अभ्यास किया जिससे मुझे बहुत प्राप्ति रही स्वयं के लिए, वो ये था कि जो मैं मुरली सुनती थी, मैंने देखा कि वैसे तो नोट्स लेने में फायदा ही होता है, परंतु मुझे दीदी याद आई। और दीदी क्या करती थी कि हर मुरली से दीदी प्रश्न निकालती थी, तो मैं समझती वो 7 दिन के प्रश्न मेरे पास नोट है और उससे मुझे एक बहुत विशेष मुरली द्वारा साकार मुरली उसकी नवीनता का बहुत सुंदर अनुभव रहा। तो आप जितने भी दिन बाकी भी अभी मधुबन में हैं, आप ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो मैं समझती आपको लगेगा कि कुछ विशेष प्राप्ति होती, क्योंकि ये मैंने देखा कि हर रोज बाबा खुशी के प्रति कुछ नई बात दे रही हैं। बाबा कहेंगे कि बच्चे इस बात को याद करने से, बच्चे इस बात का अभ्यास करने से आपको विशेष खुशी होंगी, और हर रोज बाबा की उसमें भिन्न 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 पॉइंट्स आती, और न सिर्फ भिन्न परंतु एक मुरली के अंदर भी कई बार बाबा 2-3 बातें खास खुशी के लिए बताती हैं। फिर दूसरा, बाबा योग के पृथ्वी विशेष कई बातों के लिए इशारा देती रहती, और जो आजकल अव्यक्त बाबा की डायरेक्शंस हमको मिल रही है कि बच्चे आप लोग प्रयोग करो, योग का एक्सपेरिमेंट करो, तो वो फिर मैं साकार मुरली से हर रोज नई बात लेती थी योग के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो डिटेल में मैं ज्यादा नहीं सुनाती हूँ, परंतु आप थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, तो साकार मुरली की जो विशेषता है और जो मुझे खुद उस स्टूडेंट लाइफ से बहुत सुंदर अनुभव रहे, मैं समझती जितने भी और दिन आप है आपको भी वो विशेष अनुभव हो सकता। मैं ये सोचती थी कि दीदी चाहे मैं जब दादी जानकी आकर के पहुंची, तो मैंने देखा कि दादी भी इस बार नोट्स ले रही है मुरली से, तो हमारी दादियां किस तरह से अपने को स्टूडेंट समझ करके चलती है और उनके अंदर जो सदा एक नवीनता रहती, कारण कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यंग एट हार्ट, स्टूडेंट लाइफ सदा बनी रहती, कभी वो अपने को ऐसे नहीं समझती कि बस हम पर करके हम पूरन बन गए हैं, परंतु और कुछ सीखना है बाबा से, और कुछ प्राप्ति होनी है, तो वो स्टूडेंट लाइफ का बहुत सुंदर अनुभव। और दूसरा, मैं ये देखती थी कि न सिर्फ वो जिस समय मैं फ्री थी उस समय की बात, परंतु ये सदा मधुबन का अनुभव, परंतु आज के मुरली से ये खास मुझे अंडरलाइन होकर के मिला कि मेरे मन में ये भावना भी है और मेरे सामने सबूत भी है कि मधुबन से ही जो छाप लगती है वो आत्मा के ऊपर ब्राह्मण बनने की छाप लगती, और वो फिर हम जब विदेश में जाती हैं वो मधुबन की शक्ति और ब्राह्मण जीवन की शक्ति हमको काम आती। परंतु इस बार मुझे ये लगता था कि मधुबन जैसे एक किला बाबा ने बनाया है और उस किले के अंदर जो हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जितना हम बहुत गहरी रीति से वो अनुभव हम अपने दिल के ऊपर अथवा संस्कारों में वो छाप लगा करके जाते हैं, वो फिर हम वहां पर भी मधुबन का मॉडल बना सकते। फर्क है कि और संस्थाएं, कई संस्थाओं के संपर्क में आना होता, उनका एक स्थान बना हुआ होता और फिर उस स्थान का विशेष अनुभव लोग करके फिर भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, तो उनको थोड़ा फर्क लगता, उनको वो अनुभव नहीं रह सकता। मैं नाम नहीं लेती हूँ, परंतु अनेक संस्थाओं के लोगों का एक्सपीरियंस उनका मैंने सुना हुआ है। परंतु मधुबन की विशेषता क्या है, न सिर्फ बाबा हमें यहाँ विशेष अनुभव कराते हैं, परंतु जो हमको यहाँ विशेष अनुभव होता, जैसे कि बाबा हमें वो ट्रेनिंग दे रहा कि वो हम अनुभव साथ अपने लेकर के जाएं, ताकि वो अनुभव हमको और आगे जीवन में मदद भी करे, हम अनेकों औरों को भी वो फायदा दिला सके। मानो कि एक बात का अनुभव, जैसे कि मधुबन में हम बाबा के सामने दृष्टि लेते हैं, अव्यक्त बाबा की मैं बात कर रही हूँ, अव्यक्त बाबा के सामने आप दृष्टि लियो, तो मैं समझती कोई ऐसा नहीं है जिसको वो लाइटपन का अनुभव न प्राप्त हो। खुद भी लाइट, बाबा का भी लाइट का स्वरूप जो एंजल रूप है, चाहे चंद घड़ी के लिए चाहे ज्यादा समय के लिए, वो बाबा हमें अपनी दृष्टि द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा हमको हर बातों से खींच करके हमें वो अनुभव कराते हैं। परंतु फिर मैंने देखा कि उस अनुभव को याद करके मैं बाबा के कमरे में भी बैठती थी, तो बाबा के चित्र से भी आप दृष्टि लियो, आपको इतना ही पावरफुल अनुभव रह सकता। परंतु न सिर्फ मधुबन के इस बाबा के चित्र के सामने दृष्टि लो, कहां पर भी विश्व के कोने कोने में बाबा से इस प्रकार से दृष्टि लो और बाबा एक सेकंड के अंदर आत्मा को जैसे मैग्नेट विल को खींच के पुल कर लेता, इस तरह से बाबा की दृष्टि चकमक का काम करके ऐसे आत्मा को बहुत सुंदर अनुभव करा सकती। तो इस बार ये विशेष अनुभव अंडरलाइन होकर के मेरे सामने रहा। और जिस तरह से बाबा के सामने जब हम बैठते हैं, तो बाबा हमें किस दृष्टि से देखता, बाबा हमें आज के पुरुषार्थी जीवन की दृष्टि से नहीं देखता, परंतु बाबा की दृष्टि बहुत बहुत ऊंची और हमको अपने उस आदि स्वरूप से, श्रेष्ठ स्वरूप से बाबा देखता। फिर बाबा जो मुरली भी चलाता है, उस अनुसार बाबा मुरली चलाते हैं। फिर हंसी मजाक में बाबा अनेक और बातें भी हमारे ध्यान पर दे ही देता, परंतु खास बाबा कितना ऊंचा हमारा स्वमान है, बाबा हमें उस बात की स्मृति दिलाते। तो वो भी हम सदा अपने को उस दृष्टि से देखें और वही हमारी स्मृति रहे, ये भी इस बार बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने मेरे लिए अंडरलाइन किया। बाकी तो दादियों के संग तो ऐसे लगता है कि बचपन के दिन कभी ना अंत आए, ऐसे ही हंसते खेलते हल्के होकर के चलते रहे। तो मुझे लगता है कि ये मधुबन के अनुभव की बातें मुझे बहुत शक्ति देती। ओम शांति।
जाने वाले को बोला, जाने वाले को बोला,
जो जाने वाले हैं दादी से विदाई लेकर के जाए, अभी आकर के टोली लेगा।